गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय ओम विष्णुवाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद जीवांग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद जीवांग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय व्रज भूमि वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय समवेद गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री गौर निताय की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय निताय गौर प्रेम आनंदे ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10, श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 7, तृणाव्रत का वध, श्लोक संख्या 21 से 25 तक करेंगे। तो 21 नंबर श्लोक हम दोहराएंगे। गोकुलम सर्वमावृणम गोकुलम सर्वमावृणवन् मुष्णं चक्षुषी रेणुभिः मुष्णं चक्षुषी चक्षुषी रेणुभिः ईर्यन् सुमहाघोरा ईर्यन् सुमहाघोरा शब्देन प्रदिश दिशः शब्देन प्रदिशः दिशः गोकुलं सर्वमावृण्वन् मुष्णं चक्षुषिरेणुभिः ईर्यन् सुमहाघोरा शब्देन ब्रदिशो दिशः गोकुलं सर्वमावृण्वन् मुष्णं चक्षुषिरेणुभिः ईर्यन् सुमहाघोरा शब्देन ब्रदिशो दिशः। गोकुलं सर्वमावृण्वन् चक्षुषिरेणुभिः गोकुलं सर्वमावृण्वन् चक्षुषिरेणुभिः शब्दार्थ गोकुलम गोकुल मंडल को सर्वम समूचे आवृणवन प्रच्छन्न करते हुए मृष्णन हरते हुए चक्षुषी देखने की शक्ति रेणुभी धूल के कणों से ईर्यन कांपते हुए सुमहाघोर अत्यंत भयानक तथा भारी शब्देना आवाज से प्रदिशः दिशः सारी दिशाओं में घुस गया। अनुवाद तथा तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की उस असुर ने प्रबल बवंडर के रूप में सारे गोकुल प्रदेश को धूल के कण से ढकते हुए सभी लोगों की दृष्टि ढक ही ली और भयावनी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं को कपाने लगा। तात्पर्य त्रिणाव्रत ने बवंडर का रूप धारण कर लिया और समूचे गोकुल प्रदेश को धूल भरे अंधड़ से ढक दिया, जिससे निकट की भी वस्तु नहीं दिखती है। तो अगले चार श्लोक का अनुवाद पढ़ लेंगे और एक में थोड़ा सा तात्पर्य। श्लोक संख्या 22 अनुवाद। क्षण भर के लिए समूचा चरागाह धूल भरी अंधड़ के घने अंधकार से ढक गया और माता यशोदा अपने पुत्र को उस स्थान में न पा सकी जहां उसे बिठाया था। तृणाव्रत द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण लोग न तो स्वयं को देख सकते न अन्य किसी और को, इस तरह वे मोहित तथा विचलित थे। 24 प्रबल बवंडर से उठे अंधड़ के कारण माता यशोदा न तो अपने पुत्र का कोई पता लगा सकी और न ही कोई कारण समझ पाई। वे जमीन पर इस तरह गिर पड़ी मानो किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया हो। वे अत्यंत करुण भाव से विलाप करने लगी। 25 जब अंधड़ तथा बवंडर का वेग घट गया तो यशोदा का करुण क्रंदन सुनकर उनकी सखियां गोपियां उनके पास आईं, किंतु वे भी कृष्ण को वहां न देखकर अत्यंत उद्विग्न हुई और आंखों में आंसू भरकर माता यशोदा के साथ वे भी रोने लगी। तात्पर्य, कृष्ण के प्रति गोपियों की अनुरक्ति विलक्षण तथा दिव्य है। गोपियों के सारे कार्यकलापों के केंद्र कृष्ण थे। कृष्ण के रहने पर वे सुखी रहती थी, किंतु उनके पास न होने पर वे दुखी थी। और इस तरह जब माता यशोदा कृष्ण के जाने से विलाप कर रही थी तो अन्य स्त्रियां भी रोने लगीं। अनुवाद दोहराइए। उस असुर के प्रबल बवंडर उस असुर ने प्रबल बवंडर के रूप में सारे गोकुल प्रदेश को धूल के कणों से ढकते हुए सभी लोगों की दृष्टि ढक ही ली और भयावनी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं को कपाने लगा। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगणा रघुनाथांवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगणा ललिता श्री विशाखावितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने अभी तो होली ने वीक था तो एक हफ्ता हम दूसरे श्लोकों पे अध्ययन कर रहे थे। और इसके पहले भी ये वाला श्लोक हमने लिया था, भूमाओ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। तो भगवान इतने भारी हो गए, पर्वत के जैसे भारी हो गए। प्रभुपाद जी अपने अलग अलग लेक्चर्स में बताते हैं कि भगवान ने जो असुरों को मारा तो उन्होंने ना अपना साइज नहीं बढ़ाया, सिर्फ एक जगह पे जब अघासुर को मारना था, क्योंकि अंदर थे कोई देख नहीं सकता था, तो पूतना को मारने के लिए भी उतने ही थे 6 दिन के बालक के रूप में। तो यहां पे भी जब माता यशोदा ने उठाया तो कृष्ण ने अपना साइज नहीं बढ़ाया, सिर्फ वजन बढ़ाया। तो माता यशोदा ने कृष्ण को धरती पे रख दिया क्योंकि नहीं सह पाई वो इतने पीड़ा भार पीड़िता। और हमने चर्चा किया था कि क्यों भगवान अलग होना चाहते थे माता से, तृणावर्त के साथ तृणावर्त तो उनको अकेला लेके जाए कि वो उसको मार सके। और उसके बाद जब बालक को रख के माता यशोदा घर के काम काज में लग गई तो क्या हुआ, तब वो असुर तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। क्या बोलते हैं, वर्लविंड, गोल गोल घूमता हुआ। जब बवंडर समुंदर में आता है तो पानी पूरा गोल 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 घूमता है, जो होता है उसको फंसा देता है। जब पानी में बवंडर आता है तो जो उसमें फंसता है पानी उसको नीचे दबाता है, जब हवा में बवंडर आता है और कोई फंसता है तो हवा उसको ऊपर फेंकती है। दोनों फर्क है, दोनों सेम बवंडर है, हवा द्वारा हो रहे हैं, लेकिन जब वो पानी में है तो व्यक्ति नीचे फंसता है, इसीलिए बड़ी बड़ी नाव भी उसमें अंदर ही फंस के डूब जाती है, लेकिन जब हवा में बवंडर होता है तो ऊपर फेंक देता है और दूर फेंकता है। तो दोनों में तकलीफ है, पानी फेंके तो अच्छा है ना, कहीं जाके गिर के तैर के निकल जाएगा, लेकिन वो अंदर खींच लेता है, और ये हवा वाला अंदर रखे जमीन पे रख के चला जाए, नहीं ये बाहर फेंक देता है। प्रकृति का अपना हिसाब किताब है। जब प्रकृति हिसाब किताब करने पे आती है और हमको दुख मिलता है तो हम उसे बच नहीं सकते, जब तक भगवान का शरण न ले। तो इसने क्या किया, हमने पिछले बार बताया था कि सिर्फ कृष्ण से नाराज नहीं था ये, क्योंकि इसके दोस्त को मार दिया था। कौन था इसका दोस्त, इसका मित्र सकटासुर, उसको मार दिया था कृष्ण, तो उसको पूरे ब्रजवासियों पे भी क्रोध था, तो इसलिए पूरा ब्रज में हाहाकार मचाया। अभी आप में अभी धूल तो देखा होगा ना, धूल उठता है भवंडर छोटा छोटा देखा होगा, स्पेशली बॉम्बे तरफ कम रहता है, स्पेशली ड्राई एरियाज में जैसे राजस्थान है तो वहां पे तो बालू उड़ता है, ये बालू वाला ही है। तो जब आता है तो पूरा अंधकार हो जाता है क्योंकि धूल 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 पूरा फैल जाता है। आप दूर से देख सकते हैं आसमान जो नीला है वो धीरे धीरे डार्क ब्राउनिश हो रहा है, ढकता जाता है ढकता जाता है। और जब पूरा ढक लेता है तो क्या होता है, आप अपने आप को भी नहीं देख सकते और किसी और व्यक्ति को भी नहीं देख सकते। आपके पास में ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु आपके एकदम समीप है तो भी नहीं देख पाएंगे, कोई व्यक्ति आपके समीप है तो भी नहीं देख पाएंगे। अब इसमें ये ढकना जो है ये क्या है, ये आवरण करना क्या है, कृष्ण को भक्तों से दूर किया गया। पूतना आई, ढोंगी गुरु का उदाहरण देते हैं, तो पूतना क्या करती है, कृष्ण को भक्तों से दूर करती है। तृणावर्त ने भी वही किया, कृष्ण को भक्तों से दूर किया। तो लेकिन क्या किसी में इतनी सामर्थ्यता है कि वो भक्तों से कृष्ण को दूर कर सके। तृणावर्त कैसे कर पाया, थोड़ी देर के लिए सही। तो ये अंधकार जो बताया गया है ये तमोगुण है, ये जो बवंडर के रूप में आया ये तमोगुण है। तो जब हमारी चेतना पे तमोगुण छा जाता है तो क्या होता है, हम कृष्ण को नहीं देख सकते, तो कृष्ण हमसे दूर हो जाते। कृष्ण को ही नहीं, हम अपने आप को भी नहीं देख सकते। आज इस घोर कलयुग में जो तमोगुण फैला हुआ है तो जीव कहां समझ पा रहा है कि वो कौन है। इसीलिए भगवान को बताना पड़ रहा है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, समझाना पड़ रहा है कि तुम देही हो, तुम देह नहीं हो। यह अज्ञानता है हमारे ऊपर, ये तमोगुण की वजह से हम समझते हैं कि हम ये शरीर हैं। तो जब हम अपने आप को भी नहीं समझ सकते तो भगवान को कैसे समझेंगे। तो ये बवंडर जब आता है कुछ समय बाद उसका वेग शांत हुआ, क्योंकि तृणावर्त ने क्या किया, कृष्ण को लिया और दूर चला गया, तो यहां सब शांत हो गया। अब माता जशोदा देख रही है, ढूंढ रही है कि यहीं पे तो कृष्ण को बैठाया था, रोना चालू कर। और क्या उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी, मानो किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया हो। गाय से बहुत उदाहरण दिए गए हैं, भक्त वत्सल कृष्ण को कहा जाता है। वत्सल शब्द भी वत्स से आया, यहां पे भी गाय का उदाहरण दिया, गाय अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है। तो जो तमोगुण का अंधकार है ये हमारे जीवन में आता है और हम भगवान से दूर हो जाते हैं। श्री श्री राधा रस बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की। तो एक तो भक्तों को भगवान से दूर किया त्रिणावत ने, ये बवंडर ने, सिर्फ दूर किया, अपने आप में इतना बड़ा दुख है, लेकिन वहां पे वो शांत नहीं बैठा। इसमें बताया कि धूल नहीं थी उसमें, कंकड़ थे, छोटे छोटे पत्थर लेके आया था वो पत्थर उठा के लाया था अपने साथ छोटे छोटे, और वो आंखों में चुभ रहे थे। तो जब जीव अंधकार से ढक जाता है, इस आवरण में आ जाता है अज्ञानता के, तमोगुण के, तो भगवान से तो दूर होता है लेकिन दुख भी भुगतता है। एक दुख तो ये है भगवान से दूर है, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आता क्योंकि अज्ञानता है। संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु दुखी हैं, आप एक सर्वे कीजिए, आपको क्यों दुख है, पैसा नहीं है, इंटरनेट स्पीड अच्छा नहीं चल रहा है। दुनिया में रिसर्च किया गया, सर्वे हुआ कि सबसे बड़ा टेंशन कब होता है, बड़ा अद्भुत उस सर्वे का रिजल्ट आया, जब फोन की बैटरी 10% तक पहुंच जाती है तो सबसे ज्यादा टेंशन होती है। ये सर्वे हुआ है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी का रिसर्च है ये, क्योंकि दुख क्या है, सुख का अभाव होना दुख नहीं है, क्योंकि सुख तो है ही नहीं संसार में। जब आप किसी इच्छा को प्रकट करते हैं, आपकी कोई इच्छा होती है, और क्या इच्छा होती है जीव की, भोगने की, इंद्रिय तृप्ति करने की। इंद्रिय तृप्ति करने की अगर आपकी इच्छा है और उसमें कोई बाधा डाल दे तो वो दुख होता है। उसको दुख कहा जाता है। जैसे भक्तों के लिए दुख हो गया, क्योंकि श्रवण में बाधा हो गई। तो इस संसार में जाके किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे क्यों दुखी हैं, तो अलग अलग जो रीजन देगा वो इसीलिए है क्योंकि उसका इंद्रिय तृप्ति जो है वो नहीं हो पा रही है, इसलिए वो दुखी हो जाता है। इच्छा पूर्ति न होना यही दुख है संसार में। अब किसका इच्छा पूरा हो रहा है वो देखिए, किसी का भी नहीं, भक्तों को छोड़ के किसका हो रहा है, क्योंकि भक्तों का इच्छा भौतिक है नहीं। अगर भक्तों में भी भौतिक इच्छा है तो वो भी पूरा नहीं होगा। जैसे ईशोपनिषद बताते हैं ना कि ये जो जगत है विश्व ये परफेक्ट है, कंप्लीट एंड परफेक्ट। अब कृष्ण ने इसको कैसे डिजाइन किया है, ये जगत परफेक्ट नहीं है। इंग्लिश में बताते हैं फिर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, कृष्ण हैज परफेक्टली डिजाइन दिस वर्ल्ड एज इम्परफेक्ट। कृष्ण ने परफेक्टली इस संसार को इम्परफेक्ट बनाया है। अब उस इम्परफेक्ट संसार में हम परफेक्शन ढूंढना चाह रहे हैं, तो क्या होता, दुख मिलता है, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा। क्यों? कृष्ण ने डिजाइन किया है। कृष्ण के क्रिएशन के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो अज्ञानता क्या है, फिर अज्ञानता क्या है संसार में, कि मैं इस संसार में सुखी हो सकता हूं, मैं एक संसार को सुखमय बना सकता हूं। भक्त बोलते हैं तो समझ में भी आता है, आचार्य बोलते हैं कि संसार को कृष्णमय बना दो, क्योंकि उनके पास शक्ति है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे धरे, ब्रह्मांड तारने का उनके पास शक्ति है। लेकिन जब एक बद्ध जीव कहता है कि मैं संसार में सुखी बनना चाहता हूं और इस संसार को सुखमय बनाना चाहता हूं, यही उसकी अज्ञानता है। और होता क्या है, बारंबार पूर्ण रूप से उसको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलता है। अगर वो इस अज्ञानता को समझ जाए कि इस संसार में कोई सुख नहीं है, तो फिर कैसे होगा, जो भक्ति करेगा वो समझ जाएगा कि इस संसार में सुख नहीं है, लेकिन सुख और आनंद प्राप्त करना है तो भक्ति के माध्यम से संसार से बाहर निकल के वैकुंठ को प्राप्त करना है, तब मिलेगा। और तब तक ये आवरण जो है ये हमको अंधकार में रखा है और दुख देता रहेगा। जैसे हम पंखा लगाते हैं, ये लाइट लगाया, क्यों लाइट लगाया, क्योंकि अंधेरा है इसलिए लाइट लगाया। देखिए बड़े बड़े वैज्ञानिक या उनके जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो बड़े गर्व से कहते हैं देखो हमने ये बनाया है, विज्ञान ने ये बनाया है, ये बनाया, ये बनाया। लेकिन विज्ञान का जितना भी आविष्कार है क्यों हुआ है, पंखा क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि संसार में दुख था गर्मी का, इसीलिए पंखा बनाना पड़ा। फिर दुख बढ़ गया तो एसी बनाना पड़ा, अंधकार का दुख था इसीलिए लाइट बनाना पड़ा। आपके आविष्कार से आप खुश हो रहे हो, थोड़ा यह भी तो सोचो कि आविष्कार बनाना क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा आविष्कार, क्योंकि दुख है संसार में। इतने सारे मेडिकल स्टोर क्यों है शहर में, क्यों इतने सारे मेडिकल स्टोर है, क्योंकि दवाई चाहिए। दवा क्यों चाहिए, क्योंकि दुख है। इतने सारे हॉस्पिटल क्यों है, क्योंकि मरीज है। इतने स्कूल कॉलेजेस क्यों हैं, क्योंकि अबोध बालक हैं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं? अबोध, एक होता है सुबोध जिसकी बुद्धि अच्छी है, एक होता है अबोध जिसका बुद्धि नहीं। स्कूल कॉलेज क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है उनको ज्ञान देने के लिए। तो क्या ज्ञान मिल रहा है वो आपको पता है। तो इस संसार में इतना दुख है, उस दुख को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में उसको सुख में परिवर्तन करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हो पा रहा है? एलोपैथी दवाइयों से क्या होता है डॉक्टर को पता है, पेशेंट को पता हो ना हो, पहले क्या होता था, एक घर में एसी लगाया तो अंदर तो ठंडा हो गया लेकिन बाहर क्या होता है, हीट बढ़ जाती है, तो बाहर की हीट दूसरे घर में जा रही है तो उसने भी एसी लगा दिया, अब दो एसी का हीट हो रहा है, दो घर में और एसी लग गया, ऐसा करते करते पूरे संसार में एयर कंडीशन लग गया, फिर क्या हुआ, वो पूरे संसार का हीट ग्लोबल वार्मिंग बन गया। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग दोनों हो गया ना। अभी बोल रहे हैं कि एंटार्क्टिका हरा हरा दिख रहा है दूर से, हरा क्यों दिख रहा है, लैंड दिख रहा है, अच्छी बात है। कोई बोलेगा अरे अच्छा है तो ग्रीनलैंड और नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर ये हरा हरा हो गया तो कितना अच्छा वेदर होगा घूमने के लिए, दो चार नए स्पॉट्स मिल जाएंगे। तो अमेरिका वाले, नॉर्थ अमेरिका वाले, वेस्ट यूरोप वाले खुश हैं, वेदर थोड़ा सुहाना हो गया, धूप देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया और अफ्रीका जैसे देशों को क्या होगा, रोस्ट हो जाएंगे पूरे। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, फिर अभी क्लाइमेटिक चेंज, तो मतलब दुख है संसार में, वो मानने को तैयार नहीं है मनुष्य, और यही उसकी अज्ञानता, और इसी अज्ञानता के चलते दुख भुगत रहा है। तो भगवान से तो दूर है, आप बाहर चले जाइए लॉकडाउन के बाद और पब्लिक से पूछिए आप क्यों दुखी हैं, आप दुखी हैं कि सुखी हैं, एक तो समझ में भी नहीं आता है। एक प्रजाति है जो बोलेगा सुखी हूं, बोलने के लिए बोल देगा, फिर दूसरा बोलेगा मैं दुखी हूं, लेकिन एक ऐसा कैटेगरी होता है जिसको पता ही नहीं है कि वो दुखी है कि सुखी है। आप जाके पूछो कैसे हैं, ठीक है चल रहा है जीवन, सब कुछ ठीक है ना, हाँ ठीक है, फिर बोलोगे कितना संसार में दुख है तो वो भी बोल देगा हाँ बहुत दुख है। तो मान लीजिए कोई बोलता है दुख है तो आप पूछिए कारण क्या है, तो बोलेगा कि कृष्ण से विरह मेरे से अब सहन नहीं होता इसलिए मैं दुखी हूं। प्रभुपाद जी का मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं इसीलिए दुखी हूं। हरिदास ठाकुर क्यों दुखी थे, कहते हैं महाप्रभु को दुखी, मतलब उनका तबियत थोड़ा उम्र हो गया था, तो महाप्रभु कहते हैं, गोविंद ने बताया महाप्रभु को कि उनका शरीर अस्वस्थ है, महाप्रभु कहते हैं हरिदास मैंने सुना तुम अस्वस्थ हो, बोले महाप्रभु शरीर तो पूरी तरह स्वस्थ है मन अस्वस्थ है। क्यों ऐसा क्यों बोलते हो, जप नहीं हो रहा है मेरा, 300,000 नाम नहीं जप हो रहा इसलिए मन अस्वस्थ है। तो संसार में जितने भी दुखी लोग हैं आपको बोलेंगे 16 माला ध्यान पूर्वक नहीं हो पा रहा है इसीलिए दुख है मेरे को, कोई बोलेगा ऐसा? तो कृष्ण से और भक्ति से तो कोई संबंध ही नहीं रह गया लोगों का, तो इतना घोर अज्ञानता आ गया है कि वो भगवान को तो छोड़ो अपने आप को नहीं पहचान रहा, भगवान को क्या पहचानेगा। तो ये तृणावर्त लेके आ अज्ञानता को, तो पहले क्या किया तृणावर्त ने, पूरा अंधकार फैला दिया, तो कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है, हाहाकार मच गया। और क्या है यहां पे, भयावनी आवाज करता हुआ, भयावह आवाज हुआ, छपड़े भी उड़ा देता है, घर वगैरह के जो छपड़े होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, उड़ीसा में आया था ना पिछले साल, फनी, विच वॉज नॉट फनी बट फनी था उसका नाम, पता नहीं क्यों नाम रखा फनी। तो सब पूरा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जितनी छतें थी सब खाली हो गई। सोचो जहां पे गिरा होगा उसको भी तोड़ देता। तो इतना ये धूल आया, और इसमें लिखा हुआ है कि छोटे छोटे कंकड़ थे, पत्थर थे। अब अगर आप आंखें खोल के किसी को देखना चाहो तो क्या होगा, वो आंखों में घुसेगा, तकलीफ देगा, तो आंख बंद करनी पड़ेगी। आंख बंद करोगे, वही तृणावर चाहता है सब लोग आंख बंद कर दे, कृष्ण को मैं लेके चला जाऊंगा। तो संसार में जीव कैसे फंसा, अंधकार डाला गया उसके ऊपर। तामिश्र अंध तामिश्र, ये पांच अज्ञानता जो ब्रह्मा जी डालते हैं जीव में, वो अज्ञानता नहीं डालेंगे तो इधर कोई जी नहीं पाएगा। संसार को चलाने के लिए डालना पड़ता है, लेकिन जीव ओरिजिनली फंसा क्यों है इस अंधकार अज्ञानता के कारण। कई बार आप देखते हैं हम प्रचार करने जाते हैं, तो जब आप प्रचार करते हैं तो 100 स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, उसमें से 40-50 स्टूडेंट जो हैं, 40-50 चाहे कॉन्ग्रीगेशन में हो चाहे स्टूडेंट्स यूथ में हो, वो जप करना चालू कर देते हैं एक माला, लेकिन फिर 16 माला तक कम पहुंचते हैं। क्यों? फिर अज्ञानता आ जाती है, फिर आवरण आ जाता है उनके ऊपर। जैसे ही कोई निकलने का प्रयास करता माया फिर आवरण डाल देती है। तो कृष्ण से दूर करना और इस संसार में दुख देना, यही कार्य चल रहा है यहां पे तृणावर जो कर रहा है। और कितनी देर के लिए आया, अगले श्लोक बताते हैं, क्षण भर के लिए। समुचा चरागहा धूल भरी अंदर से घने अंधकार से ढक गया। ज्यादा देर के लिए नहीं टिका। आप देखेंगे तो तूफान भी आते हैं, ज्यादा देर नहीं टिकते, आके चले जाते हैं, लेकिन वो जब आता है और जाता है तो बहुत कुछ तबाही मचा देता है। टिकता नहीं है वो, उसको तो निकल जाना है ना। तो इससे एक और सीख मिलती है। अभी हम तो बद्ध जीव हैं, प्रयास कर रहे हैं कृष्ण का नाम लेके भक्ति करने का। भक्ति का तो सिर्फ प्रयास चल रहा है ना अभी, क्योंकि भक्ति प्रारंभ होगी तो आनंद मिलता है, तो अभी भक्ति का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, या भक्ति का आभास बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हृदय में अनर्थ तो है, हम सबके हृदय में अनर्थ था, उसको शुद्ध कर रहे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं। आप दृढ़ हो जाते हो, दृढ़ता में उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का, कैसे 5 साल का बालक दृढ़ हो गया। इसीलिए कर पाया, नारद मुनि के समझाने से भी नहीं समझा, वो चाहिए मतलब चाहिए। तो हम भी दृढ़ होते हैं, लेकिन हमारी दृढ़ता स्थायी नहीं होती। क्यों? ये शाम तो अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रत। हम पूरा दृढ़ता से भजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी भी पाप हो रहा है, या पुराने पाप का फल अभी भी है। तो धीरे धीरे जाएगा, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक माला जप करना चालू करेंगे तो हमारे सब प्रारब्ध अप्रारब्ध बीजम कूटम सब खत्म हो जाएगा, इमीडिएटली आनंद में आओगे, नहीं, वो तो शुरू है ना। संसार में कोई भी चीज देखिए आप, वस्तु कैसे होती है, ग्रेजुअली बढ़ती है और ग्रेजुअली घटती है। भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, कुछ लोग भक्ति से छूट जाते हैं दुर्भाग्यवश, तो भी धीरे धीरे ही होता है, ऐसा नहीं कि आप भक्ति कर रहे सडनली, बोलते ना सडनली किधर चला गया, नहीं अंदर कुछ चल रहा था, बहुत समय से चल रहा था। तो अब हमारे अंदर अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो कई बार यूथ आते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, काम का, कि काम बहुत है ऑफिस में, ऑफिस में काम नहीं है, संसार में काम नहीं है, हृदय में काम बैठा हुआ है। तो मैं तो एक डिवोटी आया, बोला प्रभु जी बहुत परेशान हूं। मैं बोला अच्छा एक बात बताओ, 24 घंटा होता है एक दिन में, ठीक है, तो तुमको जो काम का वेग आता है जब, कितनी देर के लिए आता है? कुछ मिनटों के लिए। और दिन में कितनी बार होता है? कभी एक बार, कभी 2-3 दिन में एक बार, बस ना। हम सब परेशान हो जाते हैं, अरे काम इतना, लस्ट इतना सतारा, इतना सतारा, इतना सतारा, जितना हम इंपॉर्टेंस देते हैं लस्ट को, उतना उसको पब्लिसिटी मिल जाती है। हम सेलिब्रिटी बना के रखे अनर्थों को, इसलिए बढ़ रहा है। एक बार यूथ मीटिंग चल रही थी महाराज के रूम में, महाराज को भक्त, वही यूथ, वही प्रॉब्लम, महाराज हाउ टू डील विद लस्ट, ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हो, डील हो जाएगा, उसको सेलिब्रिटी बना दिया हमने। तो जब उसका वेग आता है काम का या क्रोध का, उस समय क्या करना चाहिए? शांति से बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम कहां होती है? जब वो काम का वेग आता है और हम कुछ कर बैठते हैं, जब क्रोध का वेग आता है हम कुछ कर बैठते हैं, क्रोध का भी वेग आएगा और आप देखेंगे कुछ मिनट भी नहीं टिकता है, वो चला जाता है। कई बार कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन ऐसा आता है कि सुनामी ला देगा हमारे और हमारे आसपास के जो भी हैं उनके जीवन में। उस समय अगर हम उसको थोड़ा सा धैर्य से काम लें, तो काम कहां है फिर बताओ? आएगा, वो फिर आएगा, गया है फिर आएगा। जैसे समंदर में पानी की लहरें आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती, तो फिर वो वेग आएगा, वो बढ़ता 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 पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन आप विचलित क्यों हो रहे हो? थोड़ी देर रुक जाओ, वो फिर चला जाएगा, फिर अपना जप करो। रोजी जप करते वक्त माइंड इधर उधर भागता है, ये भी प्रॉब्लम है, वो मन का वेग है। लेकिन मन के वेग को कैसे डील करना है? काम का वेग तो हो गया, मन के वेग को कैसे डील करना है? सेम सेम उसको सेलिब्रिटी बना दिया हमने, इंपॉर्टेंस दो ही मत। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? इग्नोर इट। नहीं तो आप जब करते रहोगे वो इतने आइडियाज देगा, इतने थॉट्स देगा, आप कर ही नहीं सकते भजन। एनीवेज, यहां तो हम ये उदाहरण से देख रहे हैं कि काम आता है, क्रोध आता है और वो चला जाता है। तो उस समय के लिए बस थोड़ा धैर्य रखो, वो चला जाएगा। और फिर अपना काम में लग जाओ। जैसे कई बार आपने देखा होगा स्टेशनों के पास, किसी भी स्टेशन के पास या रोड पे फुटपाथ लगा के बैठते हैं लोग, तो जैसे ही गाड़ी जाती है सायरन के साथ सब रैप अप कर देते हैं और गाड़ी निकल जाती है फिर खोल देते हैं। ऐसे ही डील करते हैं ना वो उधर से जाने वाले हैं ना वो गाड़ी रुकने वाली है इधर, वो चला जाएगा। तो ऐसे काम और क्रोध के वेग को डील किया जा सकता है। फिर माता यशोदा अपने पुत्र को स्थान पे नहीं पाई, तृणावर्त लेके चला गया। तो क्या हुआ? तृणावर्त द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण लोग न तो स्वयं को देख सकते थे और न किसी और को, इस तरह वे मोहित तथा विचलित हो गए। तो हम भी इस संसार की अज्ञानता में कैसे हैं, मोहित हो गए हैं और विचलित हो गए हैं। ये वही उसका रिप्रेजेंटेशन। जब अपने पुत्र को न पाई तो माता यशोदा जमीन पे गिर पड़ी, भूमि पे गिर पड़ी। जैसे एक गाय अपने बछड़े को खोकर, जब गाय अपने बछड़े को खोती है तो सब काम का छोड़ देती है, फिर रोती रहती है। इसलिए मैंने एक गौशाला में देखा था, तो उन्होंने एक ऐसा छोटा सा ना बछड़े जैसा बना के घास का रखा था, ऊपर से पता नहीं बछड़े का चमड़ी था वैसा कुछ दिख रहा था। तो बोला ये क्यों रखा हुआ? बोले ये जो गाय है ना, इसका बछड़ा मृत्यु हो गया, अब जब तक उसको देखेगी नहीं वो रोती रहेगी, इसलिए उसको दिखा देते हैं, शांत होती है। तो इसलिए गाय का उदाहरण दिया। और ये भवंडर अब जो है भवंडर रुक गया, उतनी देर के लिए आया था बस। हमने कहा ना कोई भी वेग इस संसार में टिकता नहीं है, किसी भी वेग से। छह वेग हैं, पांचों वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो भूख लगती है वो वेग आता है। आप देखिए फास्टिंग होता है हमारा, हम निर्जल करते हैं या हाफ डे फास्टिंग होती है, जो आपका प्रसाद पाने का टाइम है उस समय एक आपको लगेगा कुछ तो है अंदर, कुछ घूम रहा है। वो कुछ घूमता नहीं, बाइल जूस होता है जो रिलीज हो रहा है अपने टाइम पे। आप कुछ नहीं खाते हैं, क्या होता है वो चला जाता है, होता है नहीं? ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे अगर आपको निर्जल रहना है तो 24 घंटे पेट में दर्द हो रहा है। भगवान ने अच्छा सिस्टम बनाया है, वो एक वेग आता है फिर चला जाता है। जीवा का भी वेग होता है, इंद्रियों का वेग होता है, वो आता है वो चला जाता है। तो ये भी चला गया, और चले जाने के बाद क्या हुआ, सब कुछ दिखने लग गया, दिखने लग गया, इसीलिए तो रो रहे हैं। और सब अन्य गोपियां और जो माता यशोदा की सखियां हैं वो सब आ गई और समझ गई, क्योंकि जैसे ही ये क्रंदन को सुना, माता यशोदा के ऐसे रोते हुए आवाज को सुना, तो समझ गई माता यशोदा किसी भी चीज के लिए नहीं रोएगी, सिर्फ अपने पुत्र कृष्ण के लिए रोएगी। और इतना दुख वो सुन के जब वो आई, वे अत्यंत करुण भाव से विलाप करने लगी। तो जब गोपियां आई उन्होंने वो समझ गई, कुछ गोपियां पूतना के समय भी ऐसे हुआ था, माता यशोदा तो इतना बड़ा राक्षसी को देखी तो मूर्छित ही हो गई, रोहिणी भी। तो गोपियां लेके आई थी कृष्ण को उधर से उठाकर, तो वैसे ही जब देखी कि माता यशोदा ऐसे विलाप कर रही है तो समझ गई कृष्ण ही को कुछ हुआ है। अब ढूंढने लग गई क्या हुआ कृष्ण को, क्या हुआ। जब ढूंढने लग गई तो पूरे ब्रज में बात फैल गई, सब ढूंढने लग गए गोकुल में, तो सब इधर उधर बाहर ढूंढने लग गए। भाई कृष्ण तो अभी ऊपर है ना, इतना दूर लेके चला गया कि किसी को दिख नहीं रहा है, कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो राक्षस है, भवंडर के रूप में आया और कृष्ण को लेके गया। कृष्ण तो, और आचार्य बताते हैं, कृष्ण तो अच्छा मजा कर रहे थे, कृष्ण देखना चाहते थे, आगे आएगा, कृष्ण अपने ब्रजधाम को देखना चाहते थे ऊपर से, एरियल व्यू घूमना चाहते थे। लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी बहुत ज्यादा दुखी हैं, कालिया के समय पे क्या हुआ, कालिया के साथ बहुत खेल रहे थे, अच्छा लग रहा था। बलराम जी मुस्कुरा रहे थे जब देखे कि कालिया ने कृष्ण को पूरा कॉइल्ड कर दिया है, बांध दिया है अपने शरीर से, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं तो सांप की जकड़ में कोई आ जाए तो बचना मुश्किल है, वो छोड़ता नहीं है। और ये तो कालिया था, 1000 इसके फन, इतना बड़ा सर्प, और कृष्ण 7 साल का बालक, लेकिन वो जितना भी टाइट कर पा रहा था, करने का कोशिश कर रहा था, हो नहीं रहा। तो बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं कि देखो मेरे साथ तो कभी नहीं खेलते ऐसे, क्योंकि अनंत शेष है ना। तो बलराम जी अनंत शेष हैं, बोले मेरे साथ तो आप कभी ऐसा खेले नहीं, इसके साथ खेल रहे हो 2 घंटा, कालिया के साथ 2 घंटा खेले भगवान पानी में। लेकिन जब देखे माता यशोदा और नंद बाबा और अन्य गोप और गोपियां बड़े दुखी हैं, भगवान ने बोला ठीक है बंद करो इस लीला को। तो यहां पे भी जब देखे दुखी है तो वापस आएंगे। तो ये तो ऊपर लेके चला गया, अब सारे गोकुल में सब ढूंढ रहे हैं, है ही नहीं कृष्ण, और किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि किधर चले गए। तो वो आगे कल के श्लोक में बताया जाएगा कि कृष्ण किधर गया। कृष्ण के प्रति गोपियों की अनुरक्ति विलक्षण तथा दिव्य है। गोपियों के सारे कार्यकलापों के केंद्र कृष्ण थे। कृष्ण के रहने पे सुखी थी और कृष्ण से विरह में दुखी थी। और जब बाकी अन्य गोपियों ने देखा माता यशोदा को और कृष्ण नहीं है, वो भी सब विलाप करने लगी, रोने लगी। तो अगर ये दुख जो अगर किसी को मिल गया, कृष्ण से विरह में अगर कोई दुखी हो सकता है, कृष्ण से विरह में जो रोता है वो तो सबसे बड़ा योगी है, महायोगी है, वो महाभाग, महाभाग्यशाली महायोगी है जो कृष्ण से विरह में रो रहा है। परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं ना, प्रभुपाद जी ने स्कूल खोला है, कौन सा स्कूल, क्राइंग स्कूल, ये रोने का स्कूल खोला है, इस्कॉन क्या है, रोना का स्कूल है। अरे बाहर भी तो रो रहे थे, इधर आए तो यहां भी रोना है, यस, क्योंकि यहां का जो रोना है वो दिव्य है, कृष्ण के विरह में रो रहा है। जब भक्त भक्ति करके, साधना भक्ति करके शुद्ध होता जाता है तो उसको यही लगता है कि कितने जन्म उसने गवा दिए कृष्ण के बिना, तो दुख लगता है। जब पट बंद होता है वो दुखी होता है, देखना चाहता है भगवान को। तो गोपियों का रोना यहां पे बताया है कि दिव्य है। आप सोचिए कृष्ण 11 साल के थे जब मथुरा गए, उसके बाद वहां पे 7 साल रुके, उसके बाद द्वारका गए, नगर बसाया, वहां पे रहने लगे, कृष्ण का विवाह हुआ, बच्चे हो गए, बच्चों का भी विवाह कर दिया, बच्चों के बच्चे भी हो गए, कितने साल बीत गए। ब्रज नहीं गए अभी तक, और ऐसा नहीं कि उधर माता यशोदा का उम्र, माता यशोदा का तो उम्र ऐसे ही था, ऐसा नहीं कि माता यशोदा का उम्र हो गया था, अभी कृष्ण बहुत साल से नहीं है तो माता धाम से ले गए वापस, नहीं, सारे ब्रजवासी बैठे थे, वो तो चाहते थे कि उनका मृत्यु हो जाए, लेकिन मृत्यु को रोक के रखे थे, क्योंकि अगर कृष्ण, कृष्ण ने कहा है मैं वापस आऊंगा, अगर कृष्ण वापस आएंगे और कृष्ण देखेंगे कि हम नहीं हैं तो कृष्ण को बहुत दुख लगेगा, इसीलिए हम रुके हुए हैं तब तक। यह सेवा भाव। जब बलराम जी आते हैं तो यशोदा के घर में किचन होता है, तो साफ सफाई किया गया उस समय, यानी कृष्ण बलराम के जाने से और बलराम जी इतने सालों बाद, इतने वर्षों बाद लौट रहे हैं, यशोदा माता ने कुकिंग किया ही नहीं, बस रोती रहती थी, घर के बाहर बैठ के मथुरा की तरफ देखती, रोती रहती थी। तो आसपास गोपियां आके माता का सेवा करती थी, नहीं तो सिर्फ वो रोती रहती थी और कुछ कार्य नहीं था। ये दिव्य है। तो ये रोना जो है भगवान के विरह में, ये असली रोना है। ये रोना नहीं, ये सोना है, सोना 24 कैरेट गोल्ड है। अगर किसी को मिल जाए तो भाग्यशाली है, महाभाग्यशाली है। और ये कब होगा? आर्टिफिशियल नहीं होगा। आप विग्रह के सामने खड़े हो गए, बहुत ज्यादा ध्यान से देखते रहेंगे ना विग्रह को, तो आंखों में वो थोड़ा सा ऐसा पानी निकल जाता है, वो प्रेम नहीं है। और किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को आप देखते रहोगे तो थोड़ी देर में आंख वो ड्राई हो जाती है। तो मैकेनिज्म है ये आंखों का कि आंख ड्राई हो जाएगी तो आंख खराब हो जाएगी, इसीलिए फिर पानी निकल आता है। तो वो प्रेम नहीं है, क्योंकि फिर वहां से जाने के बाद क्या करता है वो भक्त, तब पता पड़ता है कितना प्रेम। तो भक्तों को सावधान रहना चाहिए, प्रेम क्या है और साहित्य क्या है। तो ऐसा हमने देखा कि तृणामृत आया बवंडर के रूप में, अंधकार फैला दिया अज्ञानता के रूप में, और सबको अज्ञानता में डाल के कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है। दुख भी हुआ, अंधकार भी हुआ, और कृष्ण को लेके चला गया। और यहां माता यशोदा और अन्य गोपियों ने जब देखा कृष्ण नहीं है तो विलाप करने लगी, और आगे देखेंगे कृष्ण ने कैसे तृणावर्त का वध किया और क्यों गला दबा के वध किया। कृष्ण ने किसी भी असुर को मारा तो उसके पीछे क्यों ऐसे मारा वो भी कारण दिया हुआ है। कृष्ण सोच समझ के कुछ कर रहे हैं, तो वह आप अब आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट, कोई प्रश्न? शिवजी से पूछते हैं, चलिए। बृहद भागवत अमृत में ये सब बताया गया है, सनातन गोस्वामी लिखते हैं। ये पूरा एक ऑर्डर दिया हुआ है। तो पहले गोप कुमार, एक्चुअली नारद मुनि पूछते हैं, गोप कुमार वाला अलग है, नारद मुनि। तो पता करना चाहते हैं सबसे बड़ा वैष्णव कौन है। तो इंद्र के पास जाते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। इंद्र बोलते हैं, नहीं मैंने तो बहुत गड़बड़ की है, मैंने क्या, मैं उल्टा सेवा क्या किया, तो गड़बड़ कर दिया। आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं थोड़ा बहुत भजन कर लेता हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं अभी तो वैष्णव नहीं है, ह्यूमिलिटी। तो मैंने भी गड़बड़ किया। तो शिव जी जो है वो महान वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी बोलते हैं मैं क्या करता हूं। देखो भगवान किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, तो आप जाओ प्रहलाद के पास, मुझसे ज्यादा बड़े कौन है, प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद के पास जाते हैं, प्रहलाद बोलते हैं भगवान आए मेरी रक्षा किए, ठीक है मानते हैं चलो, लेकिन उन पांडवों का क्या, जिनके दो घर में भगवान रह गया। तो पांच पांडव हैं, ये बड़े भक्त हैं, पांडवों के पास जाते हैं, पांडवों से पूछते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हम क्या भक्ति की, ये तो भगवान के हितों की कृपा हो गई। भाग्यशाली तो वो द्वारकावासी हैं जिनके साथ कृष्ण हमें हमारे पास आते थे, आते जाते रहते थे ऑन एंड ऑफ, लेकिन वहां तो रहते थे, रहा भगवान वहां पे, रहे भगवान द्वारकावासियों के पास। तो फिर द्वारकावासियों के पास पहुंचते हैं, द्वारकावासी बोलते हैं हमारा क्या भाग है, फिर वो भेजते हैं ब्रजवासियों के पास। और ऐसा ब्रजवासी फिल्टर होते 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 अंत में कहां पहुंचते हैं, ब्रज की गोपिकाओं के पास, और उनमें सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बताया गया। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, बोले शिवजी इज बेस्ट डिवोटी। तो किसी ने पूछा व्हाट अबाउट युधिष्ठिर, युधिष्ठिर इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवोटी। व्हाट अबाउट प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवोटी। पूछ रहे भक्त को, प्रभुपाद बताते जा रहे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कृष्ण भक्ति में सबसे बेसिक मिनिमम बेस्ट होता है। तो ऐसे वैष्णव में कंपैरिजन नहीं किया जाता, लेकिन बेस्ट जो होता है वो बेसिक, एक भक्त हो गया मतलब ऑलरेडी बेस्ट हो गया, अब उसके ऊपर चलता है। जैसे कृष्ण का, कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण परफेक्ट, द्वारकाधीश कृष्ण परफेक्ट हैं, लेकिन मथुरा नरेश मोर परफेक्ट हैं, और श्याम सुंदर मोस्ट परफेक्ट है। परफेक्ट तो तीनों है ना, भगवान है। चैतन्य महाप्रभु ने भी तो ब्रज की गोपिकाओं की भक्ति, सन्यासी होके भी उन्हीं की भक्ति का गुणगान किया। और वो नारद मुनि जो परीक्षा लेने जाते हैं ना, कृष्ण भेजते हैं उनको, कृष्ण बोलते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है। कोई भी चरण धूल कहां देता है, गोपियां देती हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम शिवजी की कथा कर रहे हैं, शिवजी का गुणगान कर रहे हैं, तो शिवजी का गुणगान होता है, इसलिए कंपैरिजन नहीं होता। शिवजी को भुवनेश्वर कहा जाता है, भुवन के ईश्वर हैं ये, पूरे भौतिक संसार के ईश्वर हैं, तो इसका मतलब थोड़ी भगवान बन गए। देखिए महान बताए, आप रुद्र गीत पढ़ेंगे उसमें शिवजी का गुणगान, रुद्र गीत नहीं, जब ब्रह्मा जी गुणगान करने आते हैं, दक्ष प्रजापति अपराध करता है जब, और शिवजी रूठ नाराज होकर चले जाते हैं सती के जाने के बाद, तब ब्रह्मा जी जब अप्रोच करते हैं, आप देखिए ब्रह्मा बोलते हैं आप ही परमात्मा हो, शिव जी को बोलते हैं। तो वही किस कॉन्टेक्स्ट में वो देखना चाहिए। फिर हम बोलेंगे अरे परमात्मा तो कृष्ण है, शिव जी कैसे परमात्मा हो। तो ऐसा
गोपी की तुलना शिक्षक कर देनी चाहिए, हमारे मन में ये भाव आना ही नहीं चाहिए। जो सब्जेक्ट हम सुन रहे हैं वो सब्जेक्ट कोई और है, तो यहाँ पर शुद्धि नहीं आ सकता है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने सोचना है कि हर बड़े बड़े मान भक्ति शुक्र सुखदेव गोस्वामी वो भी गोपियों की क्या बात कर रहे हैं, हमारे आचार्य वो भी गोपियों की क्या बात करते हैं, भागवत क्या गोपियों की बात करते हैं। और शिव जी अगर वो गोपी के स्थान में होते हैं तो गोपी बनते हैं, हमेशा के लिए गोपी बनते हैं, लेकिन कोई कार्य दे दिया, ऐसा कार्य दे दिया हम लोग उसकी निंदा करते हैं। कभी भी हम भक्तों ने सोचना नहीं चाहिए कि शिव जी तुलना गोपियों से करें। हरे कृष्ण।
गोपी बनने गए थे ना अर्जुन, तो अर्जुन ही गोपी बन गया, नारद भी नारद ही गोपी बन गए, लेकिन शिवजी को गोपियों ने बोला ठीक है रास देखना है, अंदर आना है तो आ जाओ, गोपी बन जाओ, ठीक है ड्रेस चेंज कर लूंगा। तो बोले ये तो ये नहीं चलेगा, इधर गोपियां डर जाएंगी, तो इधर ये क्या। बोले नहीं नहीं ये नहीं छोड़ूंगा मैं। तो बोले फिर एक काम करो, बाहर रह के रक्षा करो कि अंदर कोई गड़बड़ आदमी ना आए, वो है गोपेश्वर महादेव। अभी भी आप जाएंगे वंशीवट के पास, गोपेश्वर महादेव का जो डीटी है, साड़ी पहने हुए शिव जी है, तो समझ जाइए गोपियां कहां किस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।